2017 में कोरियन प्रायद्वीप का तनाव, साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधि और ऑफशोर केंद्र में फंसे हुए शरणार्थियों की किस्मत, ये सारे विषय छाए रहे थे विदेश नीति के संदर्भ में। तो आइए आज नजर डालते हैं उन्हीं घटनाओं पर जो 2017 में बनी रही एक चुनौती ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2017 में वर्ष की शुरुआत के साथ ही नए अमरीकी राष्ट्रपति ने निर्णय किया अमरीका का टीपीपी संधि से अलग होने का, और इसी से सवाल उठे श्री ट्रंप के इस क्षेत्र के प्रति उनकी निष्ठा पर, और टीपीपी के लिए उनका कहना था,
hundreds of billions of dollars of trade deficits with China. We have $805 billion in trade deficits with the world. You almost say, who's making these deals? When you're losing that kind of money, right? We actually have almost $800 billion. Well, I do believe in free trade. I love free trade. But it's got to be smart trade.
Yes.
So I call it fair trade.
प्रधानमंत्री टर्नबुल ने इस बात पर निश्चय प्रकट किया कि टीपीपी से अमेरिका के अलग होने के निर्णय से फिलहाल कुछ अधिक प्रभाव नहीं होगा।
President Trump has said America will not proceed with the Trans-Pacific Partnership. You have to recognize that his Secretary of State Rex Tillerson has been a long-time advocate for it. The Republican Party in the Congress have been strong supporters of the TPP. So it is possible that US policy could change over time on this.
और 11 देशों के बीच व्यापार साझेदारी एक समझ के साथ चलती रही। इस बीच ये भी खतरा बना कि राष्ट्रपति ओबामा और ऑस्ट्रेलिया के बीच शरणार्थी स्थापन के लिए बना समझौता कहीं खतरे में ना आ जाए। उस समय के इमिग्रेशन मंत्री पीटर डाटन ने इस ओर सकारात्मक बने रहने की पूरी कोशिश की।
So obviously we entered into an arrangement with the previous administration. We would like for that to continue with the Trump administration, but we're working with the Trump officials at the moment. So that's where we're at.
Shri Trump aur Shri Turnbull ke beech phone call achanak hi sarvvidit ho gayi. और ये भी पता चला कि अमरीकी राष्ट्रपति ने इस डील पर अपनी नाराजगी प्रकट की और इसे बेवकूफी भरी डील कहा। लेकिन जब ये दोनों नेता मई में आपस में मिले तो उन्होंने मीडिया के सामने स्वयं को सहसा प्रस्तुत किया और इन सभी खबरों को कहा कि बस यूं ही झूठी मूठी बातें।
We had a good telephone call.
We had a great call.
You guys exaggerated that call. That was a big exaggeration. I want to tell you, we had a great call. I mean, we're not babies, but we had a great call.
अभी को श्री ट्रंप आखिरकार किसी तरह से इस डील के लिए राजी हो गए, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन शरणार्थियों को अपने देश में लेने के लिए तैयार थीं। सुश्री आर्डन ने प्रधानमंत्री श्री टर्नबुल के साथ कई बार बातचीत की और न्यूजीलैंड के प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए कहा कि न्यूजीलैंड कुछ शरणार्थी ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री टर्नबुल ने इस पर फिलहाल रुकने का फैसला किया।
We thank them for the offer. They've kept it outstanding, but our focus is on completing the resettlement arrangements with the United States, which of course covers up to 1,250 refugees. So we'll complete that, and then when that is complete, then we can reconsider the New Zealand proposal.
तो सुश्री आर्डन ने इस स्पीच ऑस्ट्रेलिया को 2.7 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वायदा किया इन शरणार्थियों की मदद के लिए, जो यूं भी अब पपुआ न्यू गिनी के मानस आइलैंड डिटेंशन सेंटर पर नहीं थे।
There is a job to be done to care for those on the islands in the interim. We intend to work with PNG and other agencies like the International Red Cross to financially support them with any additional needs that may be need to be met while those refugees remain on the island.
South China Sea में चीन की गतिविधियों के साथ इस विवादित क्षेत्र में शस्त्रों के विस्तार पर ऑस्ट्रेलिया पर खासा दबाव बना। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में चीन और एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर एमी किंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने दो महत्वपूर्ण पार्टनर्स के बीच में फंसा हुआ है.
It creates real uncertainty, I think, about China's intentions for the South China Sea. So the development of these weapon systems, even if they're defensive, suggests that China envisages the possibility of future conflict in this region. And it's, I think, very important for Canberra to remember that the South China Sea dispute goes to the heart of the strategic relationship between the US and China.
अब इस क्षेत्र से अलग हटकर बात करें तो फरवरी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से ऑस्ट्रेलिया इजरायल संबंधों पर विशेष प्रभाव पड़ा और नए पैमाने तय हुए. इसी तरह पिछले साल जुलाई में ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच आतंकवाद के विरोध में उठाए कदम, व्यापार और रणनीतिक आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई और ब्रिटिश रक्षा सचिव सर माइकल फॉलन ने कहा कि सुरक्षा आदि पर आपसी सहयोग से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे.
We believe that Australia, as an enhanced partner in NATO, can play a pivotal part in enhancing NATO's understanding of the challenges that we share in the Indo-Pacific region. And we believe that the five-power defence arrangements have a greater role too to play in building regional security, in increasing maritime security and helping to fight terrorism.
और पिछले साल बराबर चर्चा में छाया रहा नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम. विदेश मंत्री जूली बिशप ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में कहा,
The United Nations Security Council is the custodian of international peace and security. Yet the authority of the council is being challenged, undermined, even ignored. The most egregious example is North Korea. Its illegal nuclear and missile programs violate multiple United Nations Security Council resolutions. The security of millions of people is at risk as a result of North Korea's refusal to abide by international laws and norms.
अक्टूबर में उत्तरी कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक खुला पत्र लिखकर आग्रह किया और ऑस्ट्रेलिया को ट्रंप राज से स्वयं को अलग रखने को कहा. जूली बिशप ने उत्तरी कोरिया के इस कदम को गलत बताया.
I see it as evidence that the collective strategy of imposing maximum diplomatic and economic pressure through sanctions on North Korea is working. And this is a response to the pressure that Australia, the United States, China, Japan, South Korea and others are putting on North Korea so that it will refrain from its current conduct of provocative and threatening behaviour.
और साल के अंत तक आते आते चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी खट्टे होने लगे. ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कई हवाले दिए कि कई स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में विदेशी हस्तक्षेप में लिप्त हैं और फिर शीघ्र ही सामने आया लेबर सेनेटर सैम दस्तयारी का स्कैंडल, उनके चीनी व्यापारी के साथ प्रभावशाली संबंधों का खुलासा हुआ और एक विदेश नीति व्हाइट पेपर में साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों के प्रति चिंता व्यक्त की गई. और श्री टर्नबुल का कथन रहा एक मजाक की तरह कि ऑस्ट्रेलिया खेलों में दुनिया भर में सबसे आगे है, खासतौर पर अगर बात क्रिकेट की हो.
We are not entirely without ambitions of global dominance. Good luck, Steve Smith. Go Australia. Reclaim the ashes, beat the bombs. Thank you.